Shanti. Good morning. Aaj Baba gupt vesh mein aaye hain, apne bachchon ko gupt yatra par le jane ke liye. Ye wonder ki baat hai कि संगम युग पे हमारी पूरी यात्रा गुप्त है. बाहर से तो साधारण लगते हैं लेकिन पूरा पुरुषार्थ अंदर का है. सूक्ष्म सूक्ष्म ही स्थूल को चलाती है. तो आज बाबा ने एक बहुत बड़ी सीक्रेट भी बताई है. ऐसे लग रहा था मुरली पढ़के कि बाबा जैसे अपनी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप को आह्वान कर रहे हैं. शायद ये 68 की वाणी होंगी क्योंकि बाबा एंजल फरिश्ता बनना उसकी बहुत एक्सप्लेनेशन दे रहे. खास करके सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ते बनने की सीक्रेट क्या है. तो आज बाबा ने दधीची ऋषि को याद किया जिन्होंने अपनी हड्डियां त्याग करके देवताओं ने एक वज्र बनाया था, एक असुर को हथियार बनाया था, एक असुर को मारने के लिए. तो वैसे ही हम जब सेवा में हड्डियां देते हैं तो यज्ञ में विकार सुहा हो जाते हैं. तो एक है समर्पण बुद्धि, एक है स्वाहा और एक है सफल करना. समर्पण बुद्धि वो है जो आज बाबा ने बताए हैं कि हमारी यात्रा गुप्त क्यों है. क्योंकि हम श्रीमत के आधार से सब कुछ करते हैं. श्रीमत के आधार से निर्विकारी बनते हैं. श्रीमत के आधार से बादशाही प्राप्त करते हैं. कोई लड़ाई से नहीं प्राप्त करते हैं. तो श्रीमत पे जो चलने वाले हैं अंदर की सूक्ष्म ताकत बहुत बढ़ती है. तो समर्पण बुद्धि वो है जो श्रीमत पे चलने वाली है. फिर हड़िया स्वाहा माना पूरा महपन मेरापन स्वाहा. कहते हैं ना हिंदी में एक शब्द है सन्यास, दूसरा है त्याग. सन्यास माना कर्मों का सन्यास लेकिन त्याग है कर्मों का फल का त्याग. कर्म करो उसका फल नहीं खाओ. तो ये जो महपन मेरापन का टैग लगा हुआ होता है हर कर्म में हमको भारी बना देता है. उसका जब त्याग होता है तब बाबा की याद स्थायी रहती है और वो कर्म पुण्य कर्म बन जाता है. और फिर सफल तो इस तरफ तन मन धन को स्वाहा किया यज्ञ में और फिर संकल्प वाणी कर्म को सफल करना है. मतलब कुछ भी निष्फल न हो जाए, वेस्ट न हो जाए. तो आज बाबा की वाणी बड़ी सुंदर है. ऐसे लग रहा है कि बाबा खुद अपनी अव्यक्त फरिश्ता के स्वरूप की ओर जा रहे हैं और हम बच्चों को लेके जा रहे हैं. तो इसी स्मृति में आज वाणी सुनना कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ते बनने वाले हैं. तब फरिश्तेपन के सीक्रेट्स कैच करेंगे आज की मुरली से. तो आज है 10 जनवरी 2026 और बाबा की साकार वाणी है. और बाबा बोले मीठे बच्चे तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है. मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। प्रश्न, स्थूल वतन वासी से सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? स्थूल वतन वासी से सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दादीजी ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। आज इस बात पे स्मृति में रहना कि जब भी कर्म करते हैं, थोड़ा सा कर्म करते हुए भारीपन आता है। क्यों आता है? कुछ बोझ है आत्मा में, लेकिन उस भारीपन को मिटाने से अपने आप को एक सेकंड अव्यक्त स्थिति में स्थित करके बाबा को याद करो, तुरंत एनर्जी मिलती है, तो भारीपन टूटता है। तो हर कर्म पे अटेंशन चाहिए, तब तो बाबा कहते हैं तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। गीत, धीरज धर मनवा, ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमद पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर है। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही यह यात्रा, जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानती है। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब हम यात्रा पर हैं। स्थूल लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है, हर एक बात गुप्त है। हमारी पूरी पुरुषार्थ गुप्त है, विजय भी गुप्त है, और गुप्त रहने से इतना सुख मिलता है। कई लोग थोड़ी सेवा करते शोई पिक्चर बन जाते, इतना सब कुछ किया उसमें आधा दुआएं तो कट हो जाती है। तो बाबा कहते हैं हर एक बात गुप्त है, यात्रा भी बड़ी गुप्त है। शास्त्रों में भी है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंचेंगे, मुझे याद करो तो मेरे पास आकर के पहुंचेंगे। यह यात्रा तो हुई ना, बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है, अपने कहां जाना है? अपने निर्वाण धाम। निर्वाण धाम कहां है? ऊपर है क्या? सी है ये, इससे ऊपर है क्या? निर्वाण धाम कहां है? कहां है? वही दादी जान की हमारे साथ खेल बहुत करती थी, इसके लिए कहती थी आप लोग सोचते हैं कि बस इसके ऊपर चले जाओ, ऊपर ऊपर जाओ और निर्वाण धाम तक पहुंचेंगे, लेकिन ये तो साइलेंस की फ्रीक्वेंसी है। तो जितना हम अंदर जाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म बनेंगे, सूक्ष्म से निराकार बनेंगे, तब ऑटोमेटिकली निर्वाण धाम की महसूसता होती है। तो बाबा कहते हैं हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्वाण धाम। विचार करो तो समझ सकते हैं यह है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं। यह यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए, परंतु बाप तो अपने समय पर आए आप ही आते हैं, जिस समय को कोई नहीं जानते हैं। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है। बरोबर यह सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने यह यात्रा सिखाई थी, और यात्रा का सार दो शब्दों में आता है, मन मना भव और मध्याजी भव। तो बाबा कहते हैं भगवान ने यह यात्रा सिखाई थी, मन मना भव मध्याजी भव। यह अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत है। सिर्फ किसने कहा? जिसने कहा उसको याद करेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे, जो कहने वाला है उसको भूल जाते हैं तो शब्दों में उलझाएंगे। कैसे करे, वो करे, ऐसे ऐसे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं यह अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत है। सिर्फ किसने कहा? यह भूल कर दी है। कहते हैं देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ। इनको, ब्रह्मा बाबा को भी देह है, इनको भी समझाने वाला दूसरा है। जिसको अपनी देह नहीं है वह बाप है विचित्र, उनको कोई चित्र नहीं है। और तो सबके चित्र है, सारी दुनिया चित्रशाला है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का यह मनुष्य स्वरूप बना हुआ है। तो वह बाप है विचित्र। समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में है, भगवान ने कहा था जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी, राजयोग सिखाते थे, जरूर राजाई स्थापन हुई थी। अभी तो राजाई है नहीं, राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा था। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी, वह लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, सत्युग था और अभी कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूं तुमको वापस ले जाने। कोई मनुष्य आत्मा तो कह नहीं सके, भले अपने आप को श्री श्री 108 जगत गुरु कह सकते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको मुक्ति धाम में लेकर के जाऊं, वही खुद रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा तो कोई ना कह सके कि मैं परम धाम से आया हूं तुमको वापस ले जाने। परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं ब्रह्मा द्वारा, और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है व्यक्त। बाबा भी खुद अपने अव्यक्त रूप के साथ ट्रांस मैसेंजर द्वारा क्वेश्चंस भेजते थे, आप कौन हो, क्या पुरुषार्थ है, क्या स्थिति है। और दादी हमको बताती थी कि बाबा दो प्रकार का पुरुषार्थ करते थे खास अमृत वेले के बाद। एक है प्राप्तियों की लिस्ट निकालते थे, और दूसरा कि अभी का जो साधारण रूप है और अव्यक्त रूप है उसका कंपैरिजन करते थे कि अभी क्या बचा है। संपन्न संपूर्ण अवस्था तक पहुंचने के लिए कौन सी बातें पे अटेंशन अभी भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है व्यक्त। तुम अभी फरिश्ता बनते हो, फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते। फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता है। यहां इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। भी देखो, सर्विस में हड्डी खलास करना एक कॉन्शियसनेस की बात है। ऐसे नहीं कि सारा दिन पागल जैसे बस बिजी 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 अपने आप को रखना। दादी जान की क्या कहती थी, जो बिजी होता है ना वो लेजी होता है। बिजी रहना और एक्टिव रहना रात दिन का फर्क है। बिजी बिजी माना आप गृहस्थ व्यवहार में भी बिजी रहते हो, इसके पीछे भागो, व्यक्ति के पीछे भागो, लेकिन एक्टिव रहना माना एक लक्ष्य सामने है, मन मना भव मध्याजी भव, उस लक्ष्य के आधार से कर्म करते हैं तो मैंपन मेरापन से दूर रहते हैं, तो हड्डियां स्वाहा हो जाती है, उस समय वो कर्म श्रेष्ठ कर्म बनता है। तो इसीलिए सूक्ष्म बनते जाते हैं ना, जितनी याद बनती है कर्म के समय पे तो हम सूक्ष्म बनते जाते हैं, तो फिर सब हड्डियां खलास कर देते हैं, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना, यह भी लिखा हुआ है अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी, गोया अपनी हड्डियां खलास करते हैं। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन वासी बनना है। यहां हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। नहीं, अच्छी बात, याद में रहते रहते हम फरिश्ता बन जाएंगे। यह भी गाया हुआ है, मिरवा मौत मलुक का शिकार, तो मलुक फरिश्ते को कहा जाता है। तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो, तुमको देवता नहीं कह सकते। मुझे एक बात याद आई, जब दादी जानकी लंदन में थे तो उनकी एक पैटर्न थी कि क्लास के बाद सभी को मिलते थे। तो एक बारी हम बैठे थे तो थोड़ा कुछ कारोबार का काम था, तो कारोबार का थोड़ा पूछा दादी को, फिर दादी ने हमको पूछा सब कुछ ठीक ठाक है। तो उन दिनों में हम लीगल का डॉक्यूमेंटेशन बना रहे थे, पॉलिसीज बना रहे थे, तो बहुत दिमाग का काम होता है ये, बहुत बुद्धि लगानी होती है लीगल पॉलिसीज प्रिंसिपल्स में। तो मुझे एक पॉलिसी लिखने में बहुत देरी हो रही थी और मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, तो मैंने दादी को बोला, दादी ये मुझे लिखना है, लेकिन मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि मैं अभी आई हूं क्या, मेरी बुद्धि इन बातों में लगाने के लिए आई हूं क्या। तो दादी ने उस समय इतनी आंख दिखाई मुझे, कहती है ये मेरी बुद्धि कहां से आई, मेरी बुद्धि को निकालो, करो समर्पित बुद्धि होकर के करो। तो ऐसे उस समय पे ऐसे ठोसा लगा कि जैसे मेरापन कट हुआ, तुरंत ऑफिस में जाकर के आधे घंटे में पॉलिसी टाइप कर दी मैंने। तो ये जो हमारे कर्म करते हुए, हम भल हड्डी से करते हैं, हम फिजिकल रूप से स्थूल कर्म करते हैं, लेकिन ये जो सूक्ष्म में मेरापन रहता है ना, उसमें से फिर हम अव्यक्त नहीं बन पाते हैं। तो इसको समर्पण करना बहुत जरूरी है। इसीलिए बाबा कहते हैं मिरवा मौत मलुक का शिकार। मलुक फरिश्ते को कहा जाता है। तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो, तुमको देवता नहीं कह सकते। यहां तो तुमको शरीर है ना, सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है। योग में रह फिर फरिश्ते बन जाते हैं, पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे, तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे, तुम्हारे में जो महावीर है वह तो अडोल रहेंगे। काल के ऊपर जीत पानी है तो निर्भय और अडोल अवस्था चाहिए। तो तुम्हारे में जो महावीर है वह तो अडोल रहेंगे, बाकी क्या क्या होता रहेगा। विनाश की सीन तो होनी है ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ। एक अर्जुन की बात नहीं है, तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं, तो बाबा ने क्या देखा, दो सीन्स देखी। देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है, फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। समझने लगे यह तो अच्छा है, विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो खुशी आ गई। तो दोनों सीन साइड में, एक विनाश का सीन और एक चतुर्भुज का सीन, तभी विनाश का महत्व पता चला, तो खुशी रही। तो विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी आ गई है। अभी यह दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना। पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिरी विनाश तो होना है ना। बहुत मूंझते हैं इस बात पे। हम अभी कोलंबिया में थे, एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो जो कॉन्फ्रेंस का डायरेक्टर था, हमारा ओपनिंग स्पीच था कॉन्फ्रेंस में, बहुत बड़ी सभा थी, तो उसने बोला, बहन जी हमको फ्यूचर के लिए होप दो, ये सृष्टि परिवर्तन होंगी। यही उनकी चिंता होती है। तो हमने बोला जरूर होंगी, लेकिन कोई चीज परिवर्तन होता है तो बिल्कुल इसका नाम रूप बदलता है ना। तो ये बात मुख से निकली कि देखो कोई पुरानी चीज होती है, समझो सब्जी बब्जी आप बाहर रखेंगे तो थोड़े समय के बाद वो सड़ जाती है ना, टमाटर रखेंगे या कोई भी सड़ जाती है, तो ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, ये पुरानी दुनिया सड़ रही है बस। लेकिन उसके अंदर जो बीज है उसको निकाल के एक नया वृक्ष बनाना है हमको। तो अभी हम कॉन्शियसनेस पे, हमारी स्मृति पे और कर्म पे अटेंशन रखेंगे तो हम नई दुनिया के लिए नया बीज बो सकते हैं। तो ये होप रखना है कि हमारी स्मृति से और कर्मों से नई दुनिया आएंगी। तो ये बात बाबा हमको होप दे रहे हैं कि विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो खुशी होनी चाहिए।
तो अभी यह दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना, पीस के लिए प्रयत्न करते हैं परंतु आखिरीन विनाश तो होना है। याद करते हैं पतित पावन आओ, तो बाप आएंगे जरूर आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे जिसमें हम राजाई करेंगे, यह तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों याद करते हैं, क्यों पतित पावन को याद करते हैं? क्योंकि दुख है, पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर आ ही नहीं सकते, तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए। गाया हुआ भी है, महाविनाश हुआ उसके बाद क्या होता है, एक धर्म की स्थापना सो तो ऐसे होगी ना। यहां से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा बाकी भारत में कौन बचेगा, जो राजयोग सीखते हैं नॉलेज देते हैं वही बचेंगे। अब ये दूसरा सीक्रेट, कौन बचेगा, हाँ, जो राजयोग सीखते हैं नॉलेज देते हैं वही बचेंगे। विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की बात नहीं, आत्मा तो अविनाशी है। विनाश, विनाश माना कंप्लीट विनाश नहीं, नाम रूप बदलता है, इसलिए मौत को कहते हैं ना चेंज ऑफ नेम एंड एड्रेस। तो इसमें डरने की बात नहीं, पतित पावन को बुलाते हैं जबकि वह आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। बाप कहते हैं विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ, वह दान दे दो तो ग्रहण छूटे। इन विकारों पर जीत पाओ, वह दान दे दो तो ग्रहण छूटे। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है, काले से गोरा बनना है। सत्युग में पवित्र देवताए थे, वह जरूर यहां बने होंगे। तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं, भगवान वाच्य यह है गुप्त। श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते हैं तुमको नर से नारायण बनना है, सेकंड में राजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चिया 4-5 दिन भी वैकुंठ में जाकर रहती थी, शुबाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे, देवताएं आते थे कितना मान शान से। तो बच्चों को दिल अंदर लगता है बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा का तन तो यह चाहिए ना, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाबा ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो, क्या पूछना चाहिए, कोई भी आते हैं तो उनसे क्या पूछना चाहिए, तो उनसे पूछो किसके पास आते हो, बीके पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है, प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके आकर बने हैं, जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं, शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा कुमार कुमारिया कितने ढेर है, कितने सेंटर्स है, सब में ब्रह्मा कुमारिया पढ़ाती है। यहां हमको दादी का वर्षा मिलता है, भगवानों वाच्य तुमको राजयोग सिखाता हूं। वह निराकार होने कारण इनके शरीर का आधार लेकर, वह निराकार होने कारण इनका शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना, हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा है, कौन है शिव बाबा? वर्षा किससे मिलता है? आज बाबा ने दादे शब्द यूज किया, तो शिव बाबा है दादा। उन्होंने हमको अडॉप्ट किया है। तुम जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। यह लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंचते ऊंच निराकार ही है। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले पहले समझाओ, दो बाप है भक्ति मार्ग में। स्वर्ग में है एक बाप, परलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई और याद क्यों करेंगे? दुख में ही नहीं जो याद करना पड़े, दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। गाते हैं दुख हरता सुख करता, वह अभी की बात है। जो पास्ट हो जाता है उसका गायन होता है। महिमा है एक की, वह एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वह तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं। तुम अभी समझते हो बरोबर, बाप ने राजयोग सिखाया जिससे बादशाही मिली, 84 का चक्र लगाया। अभी फिर हम पढ़ रहे हैं फिर 21 जन्म राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे। ऐसे कल्प पहले बने थे, समझते हो हमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया। अब फिर सत्युग त्रेता में जाएंगे, तब तो बाप पूछते हैं आगे कितने बार मिले हो। यह प्रैक्टिकल बात है ना, नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है। जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे। पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए हैं। कोई चीज सदैव नई ही रहे यह तो हो ही नहीं सकता। पुरानी जरूर बनती है। हर चीज सत्तो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता है और यह है नर्क। वह है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं, हे पतित पावन, हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि दुख जास्ती हो जाता है ना। परंतु यह समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने हैं। देखो ये बड़ी गहरी बात है जो आगे बाबा ने बताई थी कि बाबा को साक्षात्कार हुआ, पहले विनाश का फिर चतुर्भुज का, तभी उनको पता चला कि विनाश के बाद विश्व का मालिक बनेंगे तो खुशी स्थायी रहती है। तो इसीलिए बाबा हमको कहते एक आंख में बाबा और दूसरे आंख में स्वर्ग रखो। अभी क्या होता है कि हम जब दूसरे आंख में स्वर्ग रखते हैं, माना अपनी संपूर्ण पूज्य अवस्था रखते हैं, तभी तो हम इस पुरानी दुनिया से उपराम जा सकते हैं ना, पुरानी दुनिया का असर नहीं लगता है। लेकिन जब एक आंख में बाबा रहता है और दूसरे आंख में पुरानी दुनिया रहता है तो क्या होता है, क्या होता है? टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, अरे बाबा मैं आपके पास आ जाऊं, मुझे यहां रहना नहीं है, खुशी नहीं रहती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्मृति में रहे कि हम पूज्य थे, मजबूरी थी, सबसर्वियंट थे, लेकिन हम पूज्य थे, माना हम पूज्य माना वर्शिप वर्दी थे, अभी पुजारी बने हैं, अधीन बने हैं, लेकिन पूज्य बन रहे हैं। उस संपूर्ण अवस्था याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, परंतु यह समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने हैं। द्वापर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए। भारत के ऊपर ही खेल है। तुम बच्चों को अभी स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो, बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं है। हम जानते हैं, बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भाग्य पाएंगे। जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भाग्य पाएंगे। हम कहते हैं बरोबर हम कल्प कल्प बाप से यह राजयोग सीखे हैं। बाबा ने समझाया है, अभी यह 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जानना चाहिए ना, भल यह चित्र न हो तो भी तुम समझ सकते हो। यह तो बिल्कुल सहज बात है, बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नरक है। सिर्फ वह लोग समझते हैं, कलयुग अर्जुन बच्चा है, कितने हजारों साल बाकी है, 40,000 साल बाकी है, तो वो लोग समझते कलयुग अर्जुन बच्चा है। तुम कहते हो यह तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है। बाप समझाते हैं, मैं आता हूं पतित दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो। कितनी सारी बातें, मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो, परंतु अभी परंतु की बात सुनो, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर यह ख्याल नहीं करते कि क्यों न हम सुख धाम में जाए। बरोबर हम आत्माओं का घर वह शांति धाम है, वहां आत्मा को ऑर्गन्स न होने कारण कुछ बोलती नहीं है। शांति वहां सबको मिलती है। सत्युग में है एक धर्म, यह अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना भी पड़े। ये बहुत समझ की बातें हैं। कलयुग है, कलयुग क्या है? कलयुग है दुख धाम। कितने अनेक धर्म है, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न शास्त्र, भिन्न भिन्न भगवान बन गए हैं। कितने अनेक धर्म है, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुख धाम होता है तभी बाप आते हैं। दुख धाम के बाद है फुल सुख धाम। शांति धाम से हम आते हैं सुख धाम में, फिर दुख धाम बनता है। सत्युग में संपूर्ण निर्विकारी और यहां है संपूर्ण विकारी। यह समझना तो बहुत सहज है ना, हिम्मत चाहिए। विकारी से निर्विकारी बनने के लिए हिम्मत चाहिए। नहीं, देखो हिम्मत के आधार से हम चलेंगे ना तो बाप चलाएगा। जो हिम्मत रखेगा वो ही निराकारी बनेगा, निर्विकारी बनेगा। जो हिम्मत रखेगा बाबा उसको ही शक्ति गुण का सपोर्ट मदद देगा। लेकिन हिम्मत हारते हैं, थोड़ा अलबेले बन जाते हैं, आलस्य हो जाती है, तो गए काम के। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हिम्मत चाहिए। कहां भी जाकर फिर समझाओ। यह भी लिखा हुआ है, हनुमान सत्संग में पीछे जूतियों में जाकर बैठता था। तो महावीर जो होंगे वह कहां भी जाकर युक्ति से सुनेंगे। देखे क्या बोलते हैं, तुम ड्रेस बदलकर कहां भी जा सकते हो उनका कल्याण करने। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिरों में कहां भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो। सबको बाप का परिचय तो देना ही है, ट्रायल करनी होती है ना। यह तो गाया हुआ है, पिछाड़ी में सन्यासी राजाए आदि आए। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं अभी। पिछाड़ी में सन्यासी राजा आदि आए, राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी, अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। दूसरा, अव्यक्त अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में ददीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। दुनिया के लोग अपनी देह के लिए कितना करते हैं, बस अपनी जिंदगी अपने लिए अपने देह के लिए ही जीते हैं। और यहां पे बाबा ने यज्ञ रचाया है ताकि सर्व पूरी आत्माओं के, संसार की आत्माओं का कल्याण हो। तो हड्डी देना इतना बड़ा भाग्य है बाबा के यज्ञ में। वरदान, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाप दादा की नंबर वन श्रीमत है कि क्या है? बाप दादा की नंबर वन श्रीमत, बाप दादा की नंबर वन श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो, यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं, समानता होती है दो चीजों की, तब जुड़ाव होता है, तो समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएंगी। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। इतनी अच्छी बात पापा ने सुनाई। स्लोगन, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसीलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। इसीलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। और आज का अव्यक्ति शारा हेडिंग है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त, जीवन बंद नहीं, न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन। अभी लिस्ट सुनो, न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थता का बंधन। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आपे ही खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं, कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है, इसीलिए कोशिश शब्द समाप्त करो। देह भान को छोड़ो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। सभी मधुबन निवासी, सभी मधुबन निवासियों के लिए विशेष सूचना है, कृपया ध्यान से सुने। आज शांतिवन में प्यारे बाबा के अव्यक्त स्मृति दिवस के निमित्त सभी को याद सौगात दी जाएगी, इसीलिए सभी को शांतिवन में कॉन्फ्रेंस हॉल में 10:30 बजे के अंदर पहुंच जाना है, फिर ब्रह्मा भोजन करके ही सभी ऊपर आएंगे। बाकी जो ट्रायल वाले भाई बहने हैं, आप सभी को 12 तारीख को सौगात दी जाएगी। फिर से बता रहे हैं, सभी मधुबन निवासी भाई बहनों को आज शांतिवन जाना है, कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी 10:30 के बीच में एकत्रित हो जाएं, फिर वहां पर आपको अव्यक्त दिवस के निमित्त, स्मृति दिवस के निमित्त याद सौगात दी जाएगी। उसके बाद ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके ही आपको ऊपर आना है। ओम शांति। हाँ, हॉस्पिटल के भी समर्पित भाई बहने, सभी समर्पित भाई ने, मधुबन निवासी, हॉस्पिटल, सभी।
आप डबल फॉरेनर्स, दोज डबल फॉरेनर्स स्टेइंग इन पांडव भवन शुड कलेक्ट द डीएफ बैजेस फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफिस आफ्टर 8:30 AM टुडे एंड कीप दीज सेफली विथ योर सेल्फ फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे बिकॉज द डबल फॉरेन बैजेस शो देम विच ग्रुप यूर इन एंड प्लीज रिमेन आफ्टर मेडिटेशन. We'll announce your program today.